नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन की गहराई में उतर रहे हैं। ये उनके अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप। तो चलिए देखते हैं इस श्रोत के जरिए अध्यात्म को कैसे समझा जा सकता है।
जी देखिए, पूज्य गुरुदेव का सबसे पहला और बड़ा जोर इसी बात पर है कि अध्यात्म जो है वो सिर्फ बाहरी कर्मकांड या रस्मों रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमारे अंदर, मतलब भीतर, एक गहरा बदलाव लाने की प्रक्रिया है, हमारी चेतना, हमारी जो आस्थाएं हैं और हमारे कर्मों को बेहतर बनाने की। और दिलचस्प बात यह है कि वो शारीरिक स्वच्छता, जैसे नहाना, सफाई रखना, इसको पहला कदम तो मानते हैं।
हाँ, वो तो है ही,
पर सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि इसे भीतरी शुद्धि का एक प्रतीक, एक सिंबल बताते हैं।
अच्छा, यानी बाहरी सफाई के भी गहरे मतलब हैं। लेकिन आम तौर पर तो यही देखा जाता है कि अध्यात्म मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ। इस बारे में पूज्य गुरुदेव का क्या नजरिया है? क्या ये कर्मकांड फिर बेकार हैं?
नहीं नहीं, बेकार नहीं है, पर उनका सही स्थान समझना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ये समझाते हैं कि कर्मकांड जो हैं वो केवल संकेत हैं, इशारे हैं।
संकेत मतलब?
हाँ, जैसे मान लीजिए रेलवे गार्ड की झंडी होती है ना, हरी या लाल।
हाँ हाँ, होती है।
वो ट्रेन को चलने या रुकने का संकेत देती है, पर ताकत उस झंडी में तो नहीं है ना, ताकत तो उस निर्देश में है जिसका वो प्रतीक है।
सही बात है, वो तो सिर्फ एक इशारा है।
बिल्कुल, तो वैसे ही कर्मकांड हमें आध्यात्मिक सत्यों की ओर इशारा करते हैं। गलती तब होती है जब हम उस इशारे को ही सब कुछ मान लेते हैं, उसके पीछे का जो गहरा संदेश है उसे भूल जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भाई कर्मकांड में ही कोई जादुई शक्ति है।
समझ गया, तो ये संकेत है, कोई जादू नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अध्यात्म का रास्ता जो है वो मेहनत और समझ का है, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना।
बिल्कुल सही कहा आपने। पूज्य गुरुदेव अध्यात्म को एक विज्ञान कहते हैं, साइंस, कोई जादू टोना नहीं। वो एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे मिट्टी से सीधे फूंक मारकर रुपया बना देना, वो जादू है जो हो नहीं सकता।
हाँ, वो तो असंभव है।
पर उसी मिट्टी से ईंटे बनाकर बेचना या खेती करके अन्न उगाना और फिर धन कमाना, ये एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। इसी तरह अध्यात्म में भी हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है, आत्म प्रयास, दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है, जिसे वो संकल्प कहते हैं, और लगातार अपना आत्म सुधार करना होता है, मतलब आत्मशोधन। कीमत चुकानी पड़ती है एक तरह से। ये सिर्फ अपनी इच्छाओं यानी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या देवी देवताओं से कुछ रस्मों के बदले में वरदान पाने की उम्मीद करना नहीं है। पूज्य गुरुदेव तो साफ कहते हैं, संकल्प पूरे होते हैं, मनोकामनाएं नहीं।
अरे, ये तो पूजा पाठ की जो आम धारणा है उससे काफी अलग बात है। अगर देवी देवताओं से सिर्फ मांगना ही नहीं है तो फिर इतने सारे देवी देवता हैं और अपने इष्ट को चुनने का क्या मतलब रह जाता है?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पूज्य गुरुदेव इष्ट के अर्थ बहुत गहरा बताते हैं। ये सिर्फ किसी चुने हुए देवता का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के लिए चुना गया हमारा सर्वोच्च लक्ष्य या आदर्श है,
आइडियल।
हाँ, देवी देवता जो हैं वो उन महान गुणों और आदर्शों के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में उतारना है, अपनाना है।
अच्छा, जैसे कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे शिव जी का रूप है, वो हमें क्या सिखाता है? संतुलित मस्तिष्क, उनके शीश पर चंद्रमा, दूरदर्शिता, तीसरा नेत्र और जीवन के नश्वरता के प्रति सजगता, जैसे मुंडमाला, शमशान वास, ये गुण हमें अपनाने हैं। तो देव पूजन का असली उद्देश्य उन दिव्य गुणों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में ढालना है।
यानी देवता हमारे लिए रोल मॉडल या आदर्श जैसे हुए, पर इस आदर्श के साथ तालमेल कैसे बिठाएं? मतलब उसे जीवन में उतारने का तरीका क्या है? क्या यही पर उपासना का महत्व आता है?
एकदम सही पकड़ा आपने। उपासना, इसका शाब्दिक अर्थ ही है समीप बैठना।
समीप बैठना?
हाँ, यानी अपने चुमे हुए आदर्श के इतने करीब आ जाना, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कि उसके गुणों का असर हम पर पड़ने लगे। जैसे कहते हैं ना, पारस पत्थर के पास लोहा सोना बन जाता है, कुछ वैसा ही।
ओके।
पर ये सिर्फ पास बैठना नहीं है, ये एक गहरा जुड़ाव है। इसमें समर्पण चाहिए, सेवा चाहिए। भज सेवायाम धातु से ही तो भजन शब्द बना है, और पूज्य गुरुदेव ने इसे पंचोपचार पूजा के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से समझाया है।
पंचोपचार पूजा? हाँ, सुना है, जल, अक्षत,
जी, पर ये पांच उपचार सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये हमारी पांच मुख्य क्षमताओं के समर्पण का प्रतीक है।
पांच क्षमताएं कौन सी?
पहली है जल, ये प्रतीक है हमारे श्रम का, हमारे समय का, हमारे सेवा भाव का। इसे समर्पित करने का मतलब है अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा समाज की भलाई में लगाना, विनम्र और शीतल बने रहना।
अच्छा, श्रम और सेवा।
जी।
दूसरा?
दूसरा अक्षत यानी चावल, ये हमारी कमाई, हमारी अर्जित संपत्ति, हमारे धन का प्रतीक है। इसे समर्पित करने का मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा निस्वार्थ भाव से अच्छे कामों के लिए देना।
ठीक है, धन का समर्पण।
जी।
तीसरा?
तीसरा दीपक, ये हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा का प्रतीक है। इसे समर्पित करना मतलब अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों का मार्गदर्शन करना, अज्ञान का अंधेरा मिटाना,
ज्ञान का प्रकाश फैलाना। चौथा क्या है?
चौथा पुष्प यानी फूल, ये हमारे व्यक्तित्व का प्रतीक है, हमारी खुशी, हमारी सुंदरता, हमारी भावनाएं। इसे समर्पित करने का अर्थ है अपने विकसित खिले हुए व्यक्तित्व को श्रेष्ठ कामों में लगाना।
अपना व्यक्तित्व समर्पित करना। और पांचवा?
पांचवा चंदन, ये हमारे चरित्र और हमारे प्रभाव का प्रतीक है। जैसे चंदन दूसरों को शीतलता और सुगंध देता है, इसे समर्पित करना यानी ऐसा परोपकारी स्वभाव बनाना कि हमारे संपर्क में आने वाले भी प्रेरित हों, उन्हें शीतलता मिले।
अद्भुत। तो मतलब पंचोपचार पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं हुई, ये तो अपने जीवन की पांच सबसे जरूरी शक्तियों, श्रम, धन, ज्ञान, व्यक्तित्व और चरित्र को अपने सबसे ऊंचे आदर्श के लिए समर्पित करने का एक पूरा प्रैक्टिकल नक्शा है। इसका मतलब ये हुआ कि योग्यता या पात्रता वो अंदर से विकसित करनी होगी।
बिल्कुल, इसी समर्पण और अभ्यास से पात्रता विकसित होती है, योग्यता आती है। पूज्य गुरुदेव बिल्कुल साफ कहते हैं कि इस आंतरिक विकास के बिना, इस पात्रता के बिना भगवान की कृपा या वरदान भी बेकार जा सकते हैं। उन्होंने कहानी भी बताई है एक ब्राह्मण परिवार की, उन्हें शिवजी से तीन वरदान मिले थे।
अच्छा, फिर क्या हुआ?
पर अपनी नासमझी और पात्रता की कमी के कारण वो सब वरदान बेकार हो गए। पहले स्त्री ने मांगा कि वो बहुत युवा और सुंदर हो जाए, पति को गुस्सा आया, उसने उसे शुक्री मतलब सुवर्णी बनने का श्राप दे दिया। अब वरदान था तो वो पूरा होना ही था।
अरे
हाँ, फिर बच्चा रोने लगा तो उसने तीसरा वरदान मांगा कि माँ वापस पहले जैसी हो जाए।
तो तीनों वरदान बेकार गए।
बिल्कुल, वरदान तो मिले पर विवेक नहीं था, पात्रता नहीं थी, तो किसी काम नहीं आए। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं सच्चा अध्यात्म देवताओं जैसा बनना है, न कि केवल उनसे मांगते रहना।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूज्य गुरुदेव के अनुसार अध्यात्म की असली यात्रा भारी कर्म कांडों में नहीं है,
नहीं,
बल्कि हमारे अपने अंदर बदलाव लाने की यात्रा है, उन आदर्शों जैसा बनने की जिनकी हम उपासना करते हैं।
हाँ, सार यही है, जोर किस पर है? आत्म शुद्धि पर, अपने अंदर झांकने पर, खुद को सुधारने पर। जो प्रतीक है उनके पीछे छिपे संदेश को समझना, जीवन में ऊंचे आदर्श रखना, और फिर अपनी जो मुख्य क्षमताएं हैं, अपना श्रम, अपना धन, अपना ज्ञान, अपना व्यक्तित्व, अपना प्रभाव, इन सब को उन आदर्शों को पूरा करने में लगाना, यही है सच्चा अध्यात्म।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है सोचने के लिए।
जी, कहिए।
अगर कर्मकांड प्रतीक हैं,
जी,
और देवता आदर्श, तो आज के समय में किसी व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक आदर्श क्या हो सकता है, और वो व्यक्ति अपनी इन पांच मुख्य क्षमताओं को उस आदर्श के प्रति कैसे समर्पित कर रहा है या कैसे कर सकता है?
ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा प्रश्न है।